الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو یہ سورہ مائدہ کی تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، جو ہم معارف القرآن کے جلد نمبر 3 میں سے پڑھا کرتے ہیں، اور درس تفسیر کہنا اس کو زیادہ مناسب ہے، کیونکہ تفسیر کا درس دے رہے ہوتے ہیں، ہم ڈائریکٹ قرآن مجید کا درس نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ جو ہمارے اکابر مشائخ نے اس کی تفسیر کری ہے اس کا درس کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے اس کلاس کے لیے بہت اہم ہے، اور آج جو ہے وہ نوٹ میں بھی اس بات کو لکھ کر کے آپ لوگوں کو شیئر کیا تھا کہ ضرور سے اپنے سامنے کتاب رکھیں یا نوٹ بک رکھیں، یا ایون جو یہ سکرین کے اوپر شیئرڈ پریزنٹیشن ہے نا، جو ہمارے دوست ڈاکٹر نعمان دانش صاحب نے بنائی ہے، ماشاءاللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، تو اس کا پرنٹ آؤٹ اپنے پاس لے کر کے، اگر آپ کے پاس اصل کتاب نہیں ہے تو کم از کم اس کا پرنٹ آؤٹ لے کر کے وہ اپنے سامنے رکھیں اور اس کے اوپر نوٹس لکھیں. ہم نے اس کو جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیا ہے، لیکن کچھ ایرر کی وجہ سے وہ ابھی آپ کر پائے ہیں، لیکن وہ ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دی گئی ہے، یعنی یہ پریزنٹیشن جو آپ کی اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی معارف القرآن ہی ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے انہوں نے آرگنائز کر کے ایک پی ڈی ایف فائل کے فارمیٹ میں ترجمہ اور آیت کو ساتھ ساتھ دے کر کے اس طرح سے کمپائل کر دیا ہے. تو اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اصل معارف القرآن نہیں ہے تو اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں، کیونکہ یہ اگر آپ کے سامنے نہیں ہوگی نا تو آپ جو ہے وہ لیکچر کو فالو نہیں کر سکیں گے، اینڈ یو ول گیٹ لاسٹ ویری ایزلی، ٹھیک ہے، کیونکہ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ایک تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اس کے اندر کافی ساری تفصیل لکھی ہوتی ہے معارف مسائل کے اندر، اور اس کے علاوہ بھی کسی بات کو سمجھانے کے لیے ہم پھر بہت ساری اور باتیں بھی کرتے ہیں، بہت ساری اس کی ریلیونس بھی اپنی ذاتی زندگی سے اور اپنے دور کے حالات سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ لیکچر جو ہے نا پھر کہیں ٹینجنٹ میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم یہ ہم اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کہ غلطی سے چلا جاتا ہے، نہیں، وی وانٹ اٹ ٹو بی دیٹ وے، ٹھیک ہے نا، وی وانٹ اٹ ٹو بی دیٹ وے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے ہو تاکہ اس کی ریلیونس جو ہے وہ ہمارے روزمرہ کے معاملات کے ساتھ بن سکے، ٹھیک ہے. تو اب وہ لیکچر جو ہے وہ کہیں چلا گیا اور آپ جو ہے وہ بس سنے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کو پھر آپ گم ہو جائیں گے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور پھر آپ یہی کہیں گے کہ بھی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. بھائی آپ کے سامنے کوئی بک کیوں نہیں ہے، کوئی ٹیکسٹ بک کیوں نہیں ہے، کوئی آپ کے سامنے جو ہے وہ نوٹ بک کیوں نہیں ہے، پین پینسل کیوں نہیں ہے. ہمارے حضرت کے جو شیخ تھے، یعنی ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا غلام حبیب رحمتہ اللہ علیہ، وہ بھی درس و قرآن بہت دیا کرتے تھے نا، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس اسٹوڈنٹ کے پاس کاغذ اور پینسل نہیں نا وہ میرا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہتے اتنے سخت تھے وہ عثمان، اور ڈانٹا تو بڑا زبردست طریقے سے کرتے تھے وہ، ٹھیک ہے. تو یہ بھائی ہمارے فائدے کے لیے، وہ خامخا کی کوئی ٹیچر کی پسند ناپسند والا مسئلہ نہیں ہے، تو ہمارا فائدہ ہے نا، ورنہ علم جو ہے وہ سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں، سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا، اور اگر سمجھ میں بھی آ رہا تو یاد بھی کچھ نہیں رہ رہا، جب یاد کچھ نہیں رہ رہا تو پھر عمل میں کیسے آئے گا، ٹھیک ہے. تو علم تو فائدہ مند اسی وقت بنے گا نا جبکہ اس کے اوپر عمل بھی ہو، और अगर समझ में कोई नहीं आ रहा या याद ही कुछ नहीं रह रहा तो कहाँ से अमल में लेकर के आएंगे ना। ठीक है, तो इतनी तो आसानी है कि सामने एक टेक्स्ट बुक मौजूद है तो उस टेक्स्ट बुक को फिर हम इस तरीके से यूटिलाइज करें। ये कह रहे हैं कि वॉइस ब्रेक कर रही है, तो एडमिन साहब ही की वॉइस के पास ही वॉइस ब्रेक कर रही है, तो फिर दूसरों का क्या हाल होगा। अच्छा, मेरा नेटवर्क, या तो पता नहीं यहाँ पे आजकल कुछ चक्कर चल रहे हैं नेटवर्क के बाहर, मोबाइल का जो वो होता है वो उसके अंदर पता नहीं क्या हो गया था एक दो दिन पहले। खैर, अगर दोबारा हो तो बताइएगा, फिर हम उसको फोन के ऊपर या तो स्विच कर देंगे क्लास को। अच्छा, और हाँ, ये एवरीवन के विंडो पर ही बताइएगा, दूसरी विंडोज को देखना मेरे लिए कभी नजर से ओझल हो जाती है वो। अच्छा, तो इन आयात के हमारे मसाइल पिछली क्लास के अंदर पढ़ने शुरू कर चुके थे। उसके अंदर हम यहाँ तक पहुंचे थे, पेज नंबर 97, किताब का पेज नंबर 97 है, जिसमें ये बात हो रही थी कि इस मुहावरे के मुताबिक, यानी जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कहा कि हमने तुम्हारे अंदर अपने नबी बनाए और तुमको बादशाह बनाया, तो तुमको बादशाह बनाए से क्या मुराद थी, तो हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने उसके बारे में तीन ओपिनियंस उलमा के लिखे हैं। तो एक ओपिनियन ये था कि पूरी कौम बनी इसराइल को कुरान करीम ने मुलूक करार दिया, तो इसमें इशारा इस तरफ भी हो सकता है कि इस्लामी हुकूमत दर हकीकत अवामी हुकूमत होती है, यानी जिसको अंग्रेजी जुबान में डेमोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों की डेमोक्रेसी वो अलग चीज है और इस्लामी डेमोक्रेसी ये अलग चीज है। तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी और इस्लामिक डेमोक्रेसी के दरमियान क्लियर फर्क है। ठीक है, वहां पर सर गिने जाते हैं, यहां पर जो है वो सरों के अंदर जो चीज है उसको वे किया जाता है इस्लाम के अंदर। ठीक है, लेकिन बहरहाल अवाम की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हुकूमत दोनों जगह पे होती है। तो हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैहि है ना, ये भी इस्लामिक डेमोक्रेसी के ज्यादा कायल थे और इसके लिए उन्होंने बड़ी जद्दोजहद भी करी। तो यही फिर उन्होंने यहाँ पे भी इस पॉइंट को नकल किया कि इस्लामी हुकूमत दर हकीकत अवामी हुकूमत होती है, अवाम ही को अपना अमीर व इमाम मुंतखब करने का हक होता है और अवाम ही अपनी इज्तिमाई राय से उसको माजूल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सूरतन अगर से फर्द वाहिद हुक्मरान होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, ठीक है, तो सूरतन यानी जाहिरतन तो एक फर्द जो है वो हुक्मरान होता है, मगर दर हकीकत वो हुकूमत अवाम की ही होती है। ठीक है, इसी वजह से सहाबा कराम भी, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम भी, जब नबी अलैहिस्सलाम हाकिम आला बने तो नबी अलैहिस्सलाम हाथ के ऊपर भी तो लोग आके बैत करते थे, लेकिन वो बैत जो है वो बैत आप के हाथ पे बैत करी, तो उन्होंने आप को फिर अपने रियासत का अमीर भी बनाया। वॉइस ब्रेक कर रही है तो इसको फिर हम बंद करते हैं, एक मिनट मैं फोन से जरा सा कनेक्ट कर लूं फिर उसके।
ठीक है, फोन
जी, तो सूरतन अगरचे फर्द वाहिद हुक्मरान होता है, मगर दर हकीकत वो हुकूमत अवाम की होती है, यानी जो चीज सूरतन नजर आ रही होती है ना वो हकीकतन वैसी नहीं होती, बल्कि पीछे कोई और हुक्मरान होता है। तो असल इस्लामी हुकूमत के अंदर अवाम हुक्मरान होती है। ठीक है, और अवाम भी इस्लामी हुकूमत में जो हुक्मरान होती है ना, वो एक एक फर्द जो है वो बाकायदा अपना रोल प्ले नहीं कर रहा होता, बल्कि कबाइली सिस्टम, दीन इस्लाम जो है ये कबाइली सिस्टम के साथ दुनिया में आया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शुरूबों व कबाइला ये तआरफु, ठीक है ना, तो इस चीज को अल्लाह ताला ने बहुत पॉजिटिव नोट के साथ बयान किया है कि हमने शुरूब और कबाइल बनाए हैं। ठीक है, तो कबीले का जो सरदार होता है वो बैत करता है अमीर के हाथों के ऊपर। ठीक है ना, एक एक फर्द आकर के अमीर के हाथ के ऊपर बैत नहीं कर रहा होता, वरना अमीर साहब तो फिर गए काम से। ठीक है ना, तो कबीलों के सरदार आके बैत करते हैं, वही अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अपनी कौमों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस्लामी हुकूमत जो है वो अवामी हुकूमत बनती है, यानी देयर इज डिटेल इन एवरीथिंग, राइट, हर चीज के पीछे एक तफसील होती है ना, तो वो ये तफसील है। तो बज़ाहिर एक शख्स जो है वो अमीर होता है, पीछे जो है वो आवाम होती है इस कबायली सिस्टम के जरिए से। ठीक है, आज के दौर के अंदर भी जो दज्जाली दौर चल रहा है दुनिया के अंदर, उसमें भी यही होता है कि बज़ाहिर आपको कोई नजर आ रहा होता है हुक्मरान, लेकिन असल में हुकूमत जो है वो किसी और की चल रही होती है। ठीक है, तो वो असल की हुकूमत जो होती है वो नजर नहीं आ रही होती है, जो नजर आ रही होती है लोग उसी को असल हुकूमत समझना शुरू हो जाते हैं, हालांकि उसकी हक असल हुकूमत नहीं होती है बल्कि पीछे किसी और की हुकूमत होती है। ठीक है, अब हमारे मुल्क के अंदर तमाशे चलते रहते हैं कि पीछे वाला जो है वो खलाई मखलूक कह दिया उसको, तो फलानी चीज कह दिया, या किस, वो भी तो आप ही के लोग हैं। ठीक है ना, वो भी आप ही के मुल्क के सिटीजन हैं जिनको कि आप कहते हैं कि वो आपके हुक्मरान हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है, वो भी आपके हुक्मरान नहीं, क्योंकि ये आपकी हुक्मरानी है ही नहीं। ठीक है ना, आपके मुल्क का कोई इदारा हो या आपके मुल्क के कोई अफराद हो, वो आपके हुक्मरान है ही नहीं। असल हुक्मरानी तो पीछे है जो कि आपको नजर ही नहीं आती। ठीक है ना, जो आपको समझ में ही नहीं आती कि पीछे किसकी हुक्मरानी चल रही है। ठीक है, क्योंकि आपको ट्यून कर दिया गया है, आपकी आंखों को ऐसा ट्यून कर दिया गया है जिसको कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान मजीद में भी फरमाया है। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने आंखों के बारे में, जो हम सूरह अनआम की तफसीर में पढ़ते हैं, क्या फरमाया जी सूरह अनआम की तफसीर में अल्लाह ताला ने आंखों के बारे में एक बात फरमाई है, क्या याद है किसी को? वनुकल्लिबु अफइदतहुम व अबसारहुम, अल्लाह ताला कुरान मजीद में आंखों के बारे में कहते हैं उन लोगों की आंखों के बारे में जो के नबी पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह ताला उनकी आंखों को क्या करते हैं, नुकल्लिबु, उनकी आंखों को फेर देते हैं, आंखों को फेर देते हैं, आंखों को पलट देते हैं, तो अब वो अंधे हो जाते हैं। जब अंधे हो जाते हैं तो फिर नजर ही कुछ नहीं आ रहा होता कि असल में हुक्मरानी किसकी चल रही है। ठीक है ना, नजर ही नहीं आ रहा होता कि असल में हुक्मरानी किसकी चल रही है, तो जिसके बारे में शोर मच रहा होता है उसी को हुक्मरान समझना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो हुक्मरान नहीं होता, लेकिन नजर क्यों नहीं आ रहा, अल्लाह ने आंखों को पलट दिया है। ठीक है, ये अल्लाह का अजाब होता है जो कि ईमान ना आने वालों के लिए होता है। ठीक है, और ये आयत नंबर 110 में है सूरह अनआम की, जो कि आपकी खवातीन की क्लास के अंदर चल रही है आजकल। ठीक है, तो ये जो फरमाया ना हजरत ने, इसके अंदर बड़ी तफसीर है कि हुकूमत दर हकीकत अवाम की होती है, लेकिन वो इस्लामी हुकूमत होती है। ठीक है, और जहाँ इस्लाम ना हो तो फिर वहां पे हुकूमत अवाम की नहीं होती, फिर वो तो अवाम के ऊपर फिर फिरौन मुसल्लत होते हैं वहां पर, जैसे बनी इसराइल के ऊपर फिरौन मुसल्लत है। बहरहाल, तो ये तो एक बात, एक इसकी तफसीर हो गई इस वाले लफ्ज की, वजाला मुलू का इसकी। फिर उसके बाद दूसरी वजह, तो दूसरी वजह वो बयान कर वो है कि जो इब्ने कसीर और तफसीर मजहरी वगैरह में बास सलफ से नकल की है, यानी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मुलूक क्यों कहा, उसकी दूसरी वजह बास सलफ से इब्ने कसीर और तफसीर मजहरी ने नकल किए, वो क्या कि लफ्ज मलिक बादशाह के मफहूम से ज्यादा आम है। लफ्ज बादशाह ये फारसी जुबान का लफ्ज है। ठीक है, इसको फारसी में पादशाह भी कहते हैं, पा से भी होता है, पा अलिफ, ये पे अलिफ बोले या पा अलिफ बोले, हम अरबी में अरबी के हिसाब से उसको पा बोलेंगे, उर्दू में जो है उसको पे बोला जाता है। तो पादशाह या बादशाह ये जो लफ्ज है ना, ये खास तौर पे बोला जाता है सिर्फ उस शख्स के लिए कि जिसके सर के ऊपर बाकायदा ताज रखा हुआ हो। ठीक है, और जो के शाहाना किस्म का इंसान हो और खुद मुख्तार किस्म की उसकी हुकूमत हो, यानी बस वो जो ऑर्डर दे दे ना, बस वही ऑर्डर। ठीक है, और बाकी सारे जो है वो उसकी चापलूसी करते हो, तो ऐसे शख्स को बादशाह कहा जाता है, शाहाना। ठीक है, तो मलिक का जो लफ्ज, अरबी का जो लफ्ज मलिक है ना, ये बादशाह एग्जैक्ट बादशाह के मानी में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि आगे फरमाते हैं कि ऐसे शख्स को अरबी में मलिक कह दिया जाता है। अरबी तो हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अरबी की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो ऐसे शख्स को मलिक कह दिया जाता है जो आसूदा हाल हो। ठीक है, यानी खाता पीता हो, उर्दू में हम कहते हैं मकान जायदाद नौकर चाकर रखता हो। ठीक है, इस मफहूम के एतबार से इस वक्त, उस वक्त बनी इसराइल से हर फर्द मलिक का मिस्दाक था। ठीक ठीक है, यानी हर फर्द के पास जो है वो अपना कोई जाती मकान था, और जायदाद का भी यही मतलब है, कम से कम एक मकान वाली जायदाद हो या उसके अलावा कोई खेत खलियान वाली जायदाद भी हो। ठीक है, तो हर के पास जो है वो मकान था, जायदाद थी, और नौकर चाकर भी थे, और सवारी भी इसके अंदर आप अपनी तरफ से शामिल कर लें। ठीक है, तो जैसे कि ना आजकल आप कहें कि माशाल्लाह मिडिल ईस्ट के जो एक्चुअल सिटीजन्स हैं तो उनका इस वक्त तकरीबन ऐसे ही हाल है, हर एक के पास कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी होती है अपनी, अल्लाह ताला ने तेल की नेमत अता फरमाई है। ठीक है, तो इस मफहूम के एतबार से उस वक्त बनी इसराइल से हर फर्द मलिक, लफ्ज मलिक का मिसदाक था, इसलिए इन सब को मुलूक फरमाया गया। ठीक है जी, तीसरी नेमत जिसका जिक्र इस आयत में है कि वो मानवी और जाहिरी दोनों किस्म के नेमतों का मजमुआ है, कि फरमाया वा आताकुम मालम युति अहदम मिन अल आलमीन, यानी तुमको वो नेमतें अता फरमाई जो दुनिया जहान में किसी को नहीं दी गई। तो इन नेमतों में मानवी शर्फ और नबूवत व रिसालत भी दाखिल है, और जाहिरी हुकूमत व सल्तनत और माल दौलत भी। ठीक है, यानी उनको जो ये कहा गया ना कि वो जालकुम मुलूका, तो आगे अल्लाह ताला ने मजीद उसको क्वालिफाई कर दिया कि आताकुम मालम युति अहदम मिन अल आलमीन, यानी तुम जो बादशाह हो ना तो तुम्हारी बादशाहत का मतलब क्या है कि तुमको वो नेमतें दी गई हैं कि जो के जहानों में कभी किसी को नहीं दी गई थी। ठीक है, तो तुम्हारी बादशाहत इस तरह की बादशाहत है, नॉट दैट तुम में से हर बंदा जो है वो तख्त व ताज के ऊपर बैठा हुआ है और सर पे ताज रखा हुआ है और उसका पूरे मुल्क के अंदर हुक्म चलता है, नहीं, ये मतलब नहीं है इसका, बल्कि नियमतों के हिसाब से इसका मतलब समझो। ठीक है, कि तुम्हें ऐसी ऐसी नियमतें मिली हुई हैं। फिर भी तो हमारे मशाइख कहते हैं ना, आज हर शख्स बादशाह है क्योंकि हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर वो चीजें होती हैं कि जो कि पुराने वक्तों में बादशाहों को भी नहीं मिला करती थी या कम कम मिला करती थी, है ना, ठंडा जबरदस्त किस्म का पानी, हर वक्त की बर्फ अवेलेबल है, और जो है वो एक से एक नेम, खाने की भी, पीने की भी, और एयर कंडीशन भी घर के अंदर लगे, बादशाहों के पास एयर कंडीशन होता था पहले, वो पंखा झल रहे होते थे। ठीक है, तो इन नेमतों के हिसाब से आज कहा जाता है हर शख्स बादशाह है। ठीक है, बादशाह लोग ये भी कहा जाता है, तो ये मुराद है यहाँ पर लफ्ज़ मलिक से। अलबत्ता यहाँ ये सवाल हो सकता है कि बेनस कुरान, यानी कुरान मजीद की आयात, नस में कुरान और हदीस, ये दोनों चीजें नस कहलाती है, नून स्वात। ठीक है, तो अगर कुरान से कोई बात साबित हो तो कहा जाता है बेनस कुरान, और हदीस से कोई बात से साबित हो तो उसको कहा जाता है बेनस हदीस। ठीक है, तो फरमाते हैं कि बेनस कुरान उम्मत मुहम्मदिया सारी उम्मतों से अफजल है। भाई कैसे अफजल है, उम्मत मुहम्मदिया को सारी उम्मतों से ज्यादा बड़ी नेमतें दी गई हैं। ठीक है, तो ये कैसे, बनी इसराइल है कि उम्मत मुहम्मदिया है, तो उसका जवाब देते हैं कि इरशाद कुरानी कुंतुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास और वकजालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, ये दोनों आयतें कुरान की इस बात पर शाहिद हैं, और हदीस नबवी की बेशुमार रिवायात इसकी तायीद में है कि उम्मत मुहम्मदिया सबसे अफजल है। फिर बनी इसराइल कैसे को सबसे बड़ी नेमतें कैसे मिल गई, तो जवाब इसका ये है कि इस आयत में दुनिया के उन लोगों का जिक्र है जो बनी इसराइल के मूसवी अहद में मौजूद थे, कि उस वक्त पूरे आलम में किसी को वो नेमतें नहीं दी गई थी जो बनी इसराइल को मिली थी, आइंदा जमाने में किसी उम्मत को इनसे भी ज्यादा नेमतें मिल जाएं ये उसके मुनाफी नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान सी बात है, किसी को समझ में नहीं आई हो तो वो पूछ सकते हैं चैट विंडो पे लिख करके। ठीक है, तो वो उस जमाने और उस जमाने से पहले के लोगों के मुकाबले में कहा जा रहा था कि भाई तुम्हें सबसे ज्यादा जहानों से बढ़कर के नेमतें दी गई हैं, फ्यूचर की बात की थोड़ी हो रही थी, फ्यूचर में तो उम्मत मुहम्मदिया को ऐसी नेमतें मिली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इस पहली आयत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो कौल नकल फरमाया गया है ये तो तमहीद थी,
इस हुक्म के बयान करने की जो अगली आयत में इस तरह से इरशाद हुआ, ठीक है, यानी पहले तो ग्राउंड बनाया जा रहा था खाली नेमतों का जिक्र करके, और जो है वो कि तुम्हें हमने अंबिया भी दिए और बादशाह भी बना दिया तुम लोगों को, और दुनिया जहां से ज्यादा बड़ी हमने तुम्हें नेमतें दे दी। ये तो सिर्फ ग्राउंड वर्क हो रहा था, असल चीज तो अब आई। वो असल क्या चीज थी? अल्लाह का हुक्म, राइट, अल्लाह का हुक्म, ये असल चीज है जो कि अगली आयत में इस तरह इशाद हुआ, या कौमी उदखुलुल अर्दल मुकद्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम, यानी ए मेरी कौम, या कौमी, कैसा मुशफिकाना खिताब है ना, शफकत भरा, ए मेरी कौम, या कौमी, ठीक है, यानी ए मेरी कौम, तुम इस मुकद्दस जमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में लिख रखी है, कतब अल्लाह, ठीक है। तो ये भी नहीं फरमाया कि ये हुक्म अल्लाह ताला ने लिख दिया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर, कि तुमने जिहाद करना है, ये नहीं फरमाया, क्योंकि हुक्म के लिए भी कतबा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, जैसे रमजानुल मुकद्दस, रमजान के रोजे जो फर्ज किए गए तो उसके लिए यही लफ्ज, कुतिबा अलैकुम अस्सियाम, तुम्हारे लिए रमजान के रोजे लिख दिए गए। भाई क्या मतलब लिख दिए गए? कि तुम्हें रमजान के रोजे मिल के रहेंगे जैसे ये शहर मिल के रहेगा? नहीं, बल्कि रमजान के रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिए गए, ठीक है। तो बनी इसराइल को यहां पर ये कह सकते थे ना कि कुतिबा अलैकुमुल किताल, ये तुम्हारे ऊपर किताल फर्ज कर दिया गया है, ये नहीं कहा, बल्कि कितना यानी आसान खिताब है और कितना प्यार से जो है वो अल्लाह ताला का हुक्म बता रहे हैं कि बस तुम जो है ना वो दाखिल हो जाओ, राइट, वो जमीन तुम्हारे लिए लिख दी गई है, इट हैज बिन डेस्टिन फॉर यू, सही है। लेकिन पता है आपको फिर क्या हुआ? तो आगे फरमाते हैं कि अर्ज़े मुकद्दसा से कौन सी जमीन मुराद है। तो अब इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च लिखी है उलमा की कि अर्ज मुकद्दसा से कौन सी जमीन मुराद है। तो इसमें मुफस्सरीन के अकवाल बज़ाहिर मुतआरिज हैं, यानी एक दूसरे से तआरुज करने वाले, कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले, ऐसे अकवाल हैं मुफस्सरीन के अर्ज मुकद्दसा के बारे में। तो बाज़ ने फरमाया कि बैतुल मुकद्दस मुराद है। बैतुल मुकद्दस क्या है? जो जहाँ पे मस्जिद अक्सा है, ठीक है, उसी को बैतुल मुकद्दस, मुकद्दस घर कहा, ठीक है। और बाज ने शहर कुद्स, यानी जिस शहर के अंदर बैतुल मुकद्दस है, पूरा का पूरा जो वो एरिया है, तो उसको शहर कुद्स, वो यहाँ पे मुराद है। और ईलिया, ठीक है, ईलिया भी ये उसी का नाम था, और उनकी जुबान में ईलिया का मतलब था अल्लाह का शहर, क्योंकि अरबी जुबान, वो लोग भी अरबी बोलते थे ना, हालांकि क्रिश्चियंस थे, या ज्यूज, ज्यूज तो बल्कि उन्होंने क्रिश्चियंस ने मार मार के बाहर निकाल दिए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, जो बैतुल मुकद्दस के अंदर कोई ज्यू नहीं रहता था। क्यों नहीं रहता था? इसलिए कि ईसाइयों ने सबको मार दिया था और बाकी को मार के बाहर निकाल दिया था, तो सिर्फ ईसाई रहते थे। ईसाइयों ने उसका नाम ईलिया रखा था। ईलिया जो है वो ईसाइयों की जुबान में, बल्कि हाँ, अल्लाह का शहर उसको कहा जाता था, जो वो अरामेक लैंग्वेज या रोमन लैंग्वेज जो भी वहां पे बोलते थे, तो उसमें ईलिया जो है ना वो अल्लाह के शहर को कहा जाता था, क्योंकि उनके यहाँ भी अल्लाह के लिए अल्लाह का ही लफ्ज इस्तेमाल होता था, ठीक है। बहरहाल जो भी इसकी तहकीक है, तो शहर कुद्स और ईलिया को अर्ज मुकद्दसा का मिसदाक बतलाया है। और बाज ने शहर अरीहा को, जो नहर उर्दुन और बैतुल मुकद्दस के दरमियान दुनिया का कदीम तरीन शहर था और आज तक मौजूद है, इसको अंग्रेजी में जेरिको कहते हैं, जेरिको, ठीक है। तो पुराना नाम इसका, जो अरबी नाम जो है ना, वो अरीहा है, और ये आज भी वहां पर मौजूद है, कदीम अरीहा भी मौजूद है, और उसके साथ जो है वो अरीहा का जो है वो मॉडर्न शहर भी मौजूद है। तो नहर उर्दुन जो है, वो जो लोग उर्दुन के बारे में ज्यादा जानते हैं वो बता सकते हैं, लेकिन मैंने जो देखा तो मुझे तो नहरे उर्दुन नाम की कोई चीज नजर नहीं आई, लेकिन शायद जो डेड सी है ना, डेड सी, वो बिल्कुल इसके ईस्ट पर है, अल्लाह आलम शायद डेड सी मुराद है यहाँ पर, बहरे मौता उसको कहते हैं, तो उसके बिल्कुल करीब है ये शहर जेरिको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में उसकी अजमत व वसअत के अजीब व गरीब हालात नकल किए जाते हैं। बाज रिवायात में है कि इस शहर के 1,000 हिस्से यानी वार्ड्स थे, अंग्रेजी में ना वो शहर के हिस्सों को वार्ड्स कहते हैं, जैसे आजकल जो है वो हॉस्पिटल के हिस्सों को वार्ड्स कहते हैं ना, तो पहले शहर के हिस्सों को भी वार्ड्स कहते थे। हर हिस्से में 1,000 बाग थे, और बाज रिवायात में है कि अर्ज मुकद्दस से मुराद दमिश्क, फलस्तीन और बाज के नजदीक उर्दुन है। और हजरत कतादा ने फरमाया, हज़रत ने फरमाया कि मुल्क के शाम पूरा का पूरा अर्ज मुकद्दस। काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो कि उलमाए बनी इसराइल में से थे लेकिन ये नबी अलैहिस्सलाम के बाद बल्ला फरमा जाने के बाद ईमान लाए थे, इस वजह से ये सहाबा में शामिल नहीं है बल्कि ये ताबिईन में शामिल होते हैं। तो काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने अल्लाह की किताब या गालिबन तौरात में, वो भी तो अल्लाह की किताब ही है ना, अगर चके बदल दिया उसमें से बहुत सारी चीज़ों को, तो उसमें देखा है कि मुल्क शाम पूरी जमीन में अल्लाह का खास खजाना है। मुल्क शाम में यानी पूरी जमीन में मुल्क शाम जो है वो अल्लाह ताला का खास खजाना है। बहरे मुर्दार शायद, हाँ वही बहरे मुर्दार यानी रेड सी जिसको कहते हैं, तो नहर उर्दुन से मुराद ये। अच्छा, किसी और ने लिखा कुछ, रिवर जॉर्डन, तो जॉर्डन रिवर जो है वो नजर नहीं आया मैप के ऊपर, अल्लाह आलम। बहरे मुर्दार तो बहुत बड़ा सा पूरा वो है ना सी, डेड सी जिसको कहते हैं, जिसमें कोई डूबता नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह की किताब यानी गालबा तौरात में देखा है कि मुल्क शाम पूरी जमीन में अल्लाह का खास खजाना है, और इसमें अल्लाह के मखसूस मकबूल बंदे हैं। एक हदीस मुबारक भी है जिसके के सनद सही भी है, यानी सही असनाद के साथ भी हदीस है, अगरचे कुछ जो है वो ज़यीफ भी हैं, लेकिन उसके जो यानी रावी हैं कुछ ज़यीफ भी हैं लेकिन सही भी। तो उस हदीस के मुताबिक 40 अबदाल हमेशा शाम में रहते हैं, 40 अबदाल, ठीक है। अबदाल जो है वो एक खास किस्म के अल्लाह ताला के बंदे होते हैं, बहुत मुकर्रब बंदे होते हैं, लेकिन ये जाहिरी तौर पर लोगों को पता नहीं होता कि अब्दाल कौन है, ठीक है। कुतुब जो होते हैं ना, ये अलग किस्म के बंदे होते हैं, ये अल्लाह ताला के बहुत मकबूल बंदे होते हैं, लेकिन ये लोगों को नजर आते हैं कि भाई ये दीन का काम करते हैं, ये दीन की मेहनत करते हैं, लोग जो है उनको पहचानते हैं कि हाँ ये वाकई अल्लाह के वली हैं, लेकिन अब्दाल को जो है वो पहचाना नहीं जा सकता, इल्ला ये कि किसी को पता चल जाए अल्लाह ताला की तरफ से कशफ और इल्हाम के जरिए से कि फलाना शख्स अब्दाल है, वरना नहीं पता चलता, ठीक है। जैसे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, ठीक है, ये यानी अब्दाल की सिफत वाले वाले थे, ठीक है, किसी को पता नहीं होता था कि ये कौन है, तो इसी तरह से और बंदे भी। तो 40 अब्दाल जो हैं वो सरजमीन शाम में हमेशा रहते हैं, जब उनमें से किसी एक का इंतकाल होता है तो अल्लाह ताला ना फिर किसी दूसरे शख्स को रिप्लेस करवा देता है, यानी वो 40 का अदद हमेशा पूरा रहता है, ठीक है। तो वो शाम के अंदर रहते हैं, और हदीसें भी हैं जिनसे पता चलता है कि कुछ जो है वो उनमें से हिजाज में भी रहते हैं और कुछ जो है वो उनमें से यमन में भी रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी तादाद जो है वो शाम में ही रहती है। तो इस जमीन को मुकद्दस इसलिए कहा गया है कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम का वतन और मुस्तकर यानी उनके ठहरने की जगह, करार पकड़ने की जगह वो शाम की जमीन रही है। और बाज रिवायात में है कि एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लबनान के पहाड़ पर चढ़े, माउंट लेबनान के नाम से पूरा एक माउंटेन रीजन आज भी मौजूद है, तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम लबनान के पहाड़ पर चढ़े, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए इब्राहिम, यहां से आप नजर डालो, जहां तक आपकी नजर पहुंचेगी हमने उसको अर्ज़ मुकद्दस बना दिया। जॉर्डन रिवर स्टार्ट्स इन नॉर्थ एंड एंड्स इन डेड सी। अच्छा, जज़ाकुमुल्लाह, ठीक है। तो वो डेड सी में जाके गिरता है, लेकिन उससे नॉर्थ से जो है वो स्टार्ट होता है। तो खैर, तो ये सब रिवायात तफसीर इब्ने कसीर और तफसीर मजहरी से नकल की गई हैं। और साफ बात यह है कि इन अकवाल में तआरुज कोई नहीं है, आपस में कॉन्ट्रोडिक्टरी बदाहे नजर आती है, लेकिन हकीकत में कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है। पूरा मुल्क शाम आखिरी रिवायात के मुताबिक अर्ज मुकद्दस है, तो उसमें जॉर्डन भी आ जाता है, उसके अंदर जो है वो फलस्तीन का पूरा एरिया भी आ जाता है, और इवन जो आज का जो सीरिया है उसका भी बहुत बड़ा एरिया उसके अंदर आ जाता है, इवन टर्की, टर्की का भी जो सदर्न पार्ट है वो भी इस पूरे रीजन को जो है ना वो कवर कर लेता है। मुल्क शाम बयान करने में बाज हजरात ने मुल्क शाम के किसी हिस्से को बयान कर दिया, किसी ने पूरे हिस्से को बयान कर दिया, ठीक है। अच्छा आगे फिर जो फरमाया, कालू या मूसा, तो इससे पहले आयत में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बजरिए मूसा अलैहिस्सलाम कौम अमालका से जिहाद करके मुल्क शाम फतह करने का हुक्म दिया था, और साथ ही ये खुशखबरी भी दी थी कि मुल्क शाम की जमीन अल्लाह ताला ने उनके लिए लिख दी है, इसलिए उनकी फतह यकीनी है। वेस्ट बैंक पैलेस्टाइन इज एक्चुअली वेस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन रिवर। अच्छा, जो वेस्ट बैंक के नाम से मशहूर है फलस्तीन का इलाका, जहाँ पे अभी भी सो कॉल्ड फलस्तीन की हुकूमत है, हुकूमत फलस्तीन जहाँ पर है वो वेस्ट बैंक का एरिया होता है ना, बाकी जो है वो फिर गजा का जो इलाका है वहाँ पे तो आपको पता है क्या क्या चल रहा है, तो वो फिर नहरे जॉर्डन का ही वेस्ट बैंक है असल में, यानी उसका जो बैंक ऑफ द रिवर होता है ना, रिवर का जो एंड होता है, तो बैंक ऑफ द रिवर वही वेस्ट बैंक वही है सब में, ठीक है जवाब। अच्छा तो इस आयत मुतज़क्करा में इस मीटिंग में ये क्या हुआ, तो इस आयत मुतज़क्करा में यानी जिसका भी तذکرہ किया गया है उसमें इसका बयान है कि इसके बावजूद बनी इसराइल ने अपनी मारूफ सरकशी और कुछ तबगी की वजह से इस हुक्म को भी तस्लीम नहीं किया। वही फितरत की खराबी जो पिछली क्लास के अंदर काफी तफसील से बात करी थी, तो फितरत उन्होंने मस्त कर दी थी अपनी ख्वाहिशों के पीछे भाग भाग करके, तो उन्होंने इस हुक्म को भी तस्लीम नहीं किया, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, इस मुल्क पर तो बड़े जबरदस्त कवी लोगों का कब्जा है, हम तो इस जमीन में उस वक्त तक दाखिल ना होंगे जब तक वो लोग वहां पे काबिज हैं, हाँ वो कहीं और चले जाए तो बेशक हम वहां जा सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले भी बात हो चुकी है, अपनी शर्तें लगा, अल्लाह का हुक्म मानने के लिए अपनी शर्तें लगानी, तो उस पे साथियों से बात होती है ना, तो हमको वही हजरत जी का सुनाया हुआ एक वाक्य याद आता है कि एक दफा जी ने फरमाया था कि मेरे पास जो है ना वो एक बहुत बूढ़ा आदमी आया, और उसके साथ उसका शायद नवासा या उसका पोता भी था, तो पोता या नवासा जो था ना वो दीनदार हो गया था, नेक बन गया था, तो वो हमारे पास आया, उसने कहा कि हजरत जी आप जो है ना हमारे दादा को कुछ नसीहत फरमा दें, ये नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है, तो आप हजरत जी हैं आपके पास आए हैं अकीदतन, तो आपकी बात मान के ये नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। तो जी ने कहा क्या ठीक है मैं कह देता हूँ इनसे, तो जी ने उनसे कहा कि बाबा जी नमाज पढ़ लिया करें, तो बाबा जी ने आगे से जवाब दिया कि पुत्र मेरे ये घुटनों का दर्द दर्द ठीक हो जाए ना तो फिर मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो जी ये वाकया सुनाते थे और कहते थे कि ये 80 साल का बूढ़ा है, ये अभी तक अपने घुटनों के दर्द के ठीक होने का इंतजार कर रहा है, ये भाई अब इसका दर्द ठीक कहां से होगा, ये तो आखिरी जाने जाने का वक्त है, लेकिन शर्तें लगाना, ठीक है ना, ये चीज ठीक हो जाए ना फिर मैं जो हूं वो नेक बन जाऊंगा, ये चीज ठीक हो जाए फिर मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगा, ये चीज ठीक हो जाए मेरे दफ्तर के मसले हल हो जाए ना फिर मैं कुरान की क्लास में हफ्ते में 1 45 मिनट की क्लास वो भी कब मैं अटेंड करूंगा, जब दफ्तर के मसले हल हो जाएंगे तब मैं ये कुरान की क्लास सुनना शुरू करूंगा, ठीक है ना, मैं बुरका पहनूंगी जब जो है ना वो शादी हो जाएगी ना, शादी के बाद बुरका पहन देगी, है ना, शादी हो जाएगी उसके बाद पर्दा करना शुरू कर देगी, यानी पहले इनकी शादी करवाओ फिर जो है ना ये आंटी जो है वो उसके बाद ये अल्लाह का हुक्म मानना शुरू करेंगी, तो ये शर्तें लगाई जाती है ना, तो ये शर्तें लगाना जो है बनी इसराइल जिनको गैरुल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, रोजाना हम उनको जो है ना वो मग़दूब के नाम से पुकारते हैं ना, तो ये उनकी सिफत है, ये उनकी सिफत है, तो अगर हम उनकी सिफत के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारेंगे यानी अल्लाह के हुक्मों के लिए अपनी शर्तें लगाएंगे कि मैं सच बोलूंगा जब जो है ना वो मुझे कोई ऐसा मुकाम मिल जाएगा कि मेरे सच के ऊपर मुझे कोई कह ना सके कुछ, मुझे कोई टॉन्ट न कर सके, उस वक्त मैं सच बोलूंगा। तो अगर हम उनकी सिफत के मुताबिक अपने ये शर्तें लगाते रहे तो फिर मग़दूब कहलाने के तो फिर हम भी मुस्तहिक बन जाएंगे ना। अल्लाह ताला का गजब, और खाली कहलवाना कोई थोड़ी होता है, ये कहलवाने की बात कोई थोड़ी है, अल्लाह का गजब होगा फिर हमारे ऊपर। ठीक है, चाहे कोई हमें मग़दूब कहे या ना कहे, लेकिन अल्लाह का गजब तो हो जाएगा क्योंकि हमने मग़दूब वालों की सिफात जो है वो अपनाई हुई है ढिटाई के साथ। ठीक है, और गजब होगा क्या, ऑलरेडी हुआ हुआ है, वो हमें नजर ही नहीं आता, तो अब क्या करें भाई। बहरहाल आगे फरमाते हैं कि वाकया इसका जो अइम्मा तफसीर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और अकरमा और अली बिन अबी तलहा वगैरह से मनकूल है वो ये है कि उस वक्त मुल्क शाम और बैतुल मुकद्दस पर कौम अमालका का कब्जा था, जो कौम आद की कोई शाख और बड़े डेल डोल और हैबतनाक कद्दो कामत के लोग थे, जिनसे जिहाद करके बैतुल मुकद्दस फतह करने का हुक्म हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को मिला था। ठीक है, तो जिहाद तो तफसीरन बता रहे हैं ना, असल में हुक्म क्या था, उदखुलू, दाखिल हो जाओ। ठीक है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म खुदाबंदी की तामील के लिए अपनी कौम बनी इसराइल को साथ लेकर मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए, जाना बैतुल मुकद्दस पर था। जब नहर उर्दुन से पार होकर दुनिया के कदीम तरीन शहर अरीहा पर पहुंचे तो यहाँ पर क्याम फरमाया। ठीक है, और बनी इसराइल के इंतजाम के लिए 12 सरदारों का इंतखाब करना कुरान करीम की पिछली आयात में बयान हो चुका है। ठीक है, तो 12 सरदार वो जो पीछे पड़ा था ना, वो बासना मिन हुमुस नई आशरा नकीबा, इस नई आशरा 12 12 सरदारों को नकीब बनाया था, तो उन 12 सरदारों को आगे भेजा ताकि वो उन लोगों के हालात और महाज जंग की कैफियात मालूम करके आए, रेकी करने के लिए भेजा। ठीक है, जैसे वो नबी अलैहिस्सलाम ने 300 लोगों को रेकी करने के लिए, अभी हफ्ते वाली क्लास में बात हो रही थी ना बच्चों को, जो हम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु के वाकयात पढ़ा रहे थे, तो वो भी 300 लोगों को यही काम करने के लिए भेजा था नबी अलैहिस्सलाम ने। तो इन 12 सरदारों को आगे कैफियात मालूम करने के लिए भेजा जो बैतुल मुकद्दस पर काबिज हैं और जिनसे जिहाद करने का हुक्म मिला है। ये हजरात बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो शहर से बाहर ही कौम अमालका का कोई आदमी मिल गया और वो अकेला इन सबको गिरफ्तार करके ले गया और अपने बादशाह के सामने पेश किया कि ये लोग हमसे जंग करने के कसद से आए। अब या तो इन लोगों ने उसको बता दिया या उसको किसी तरीके से पता चल गया इनकी हरकतों की, या इनके होते हैं ना मूव्स होती हैं जब कोई एस्पियोनाज करने के लिए आता है तो वो एक खास किस्म के तरीके से, तो उसको पता चल गया कि ये जो है ना वो हमसे जंग करने के कसद से यहाँ पर रैकी करने के लिए आए, तो वो ले गया और शाही दरबार में मशवरा हुआ कि इन सबको कत्ल कर दिया जाए या कोई दूसरी सजा दी जाए। बिल आखिर राय इस पर ठहरी कि इनको आजाद कर दें, हमसे कोई थोड़ी ये लड़ सकते हैं, ऐसा वो अपने जोम में थे कि हमसे तो लड़ना तो इनके बस में ही नहीं है, तो इनको आजाद कर दिया जाए ताकि ये अपनी कौम में जाकर अमालिका की कुव्वत और शौकत के ऐसे ऐनी गवाह साबित हों कि कभी उनकी तरफ रुख करने का ख्याल भी दिल में ना आए। ठीक है, दहशत जदा हो जाए, जैसे कि हम दहशत जदा होते हैं ना, तो उसी तरह वो भी दहशत जदा हो जाए और फिर वो ख्याल ही ना लाए कि भी ये कुछ सोचा भी जा सके इस बारे में। इस मौके पर अक्सर कुतुबे तफसीर में इसराइली रिवायात की लंबी चौड़ी कहानियां दर्ज हैं जिनमें इस मिलने वाले शख्स का नाम औज बिन उनक या उनक बतलाया गया है। औज बिन उनक पढ़ते हैं इसको, यार आप बच्चों की क्लास में माशाल्लाह बड़ी तफसील से इसके बारे में बात हुई थी जो कसतुल अंबिया वाली क्लास में, याद है बच्चों, बच्चे भी तो ले रहे हैं क्लास, इस क्लास के। तो औज बिन अनख बतलाया गया है और उसकी बेपनाह कदो कामत और कुव्वत और ताकत को ऐसी मुबालगा आमेजी के साथ बयान किया है कि किसी समझदार आदमी को उसका नकल करना भी भारी है। इमाम तफसीर इब्न कसीर अंतुना ने फरमाया कि औज बिन अनख के जो किस्से इन इसराइली रिवायात में मजकूर हैं ना अकल उनको कबूल कर सकती है और ना शरा में इनका कोई जवाज है, बल्कि ये सब किज़्ब व इफ्तिरा है, सब झूठ उन्होंने अपनी किताबों के अंदर लिख दिए हैं, ये झूठे किस्से। तो वो कुछ किस्से जो हमने सुने थे वो यही थे कि इसकी जो इसका कद था ना वो कोई 3,000 गज से ज्यादा, इसका कद था 3,000 गज, ठीक है। तो ये शख्स जो था वो इतना लंबा था कि जब तूफान नूह आया तो तूफान नूह का जो पानी था ना वो इसके घुटनों तक आया था, और ये वाहिद शख्स था जो कि काफिर भी था और तूफान नूह में बच भी गया था। और वो बचा क्यों था? अल्लाह ने उसको बचा दिया था। क्यों बचा दिया था? कि नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए किसी लकड़ी की जरूरत थी, कोई खास किस्म की लकड़ी, तो वो लकड़ी ये लेकर के आया था। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने उसको नूह तूफान नूह से खुलासी दे दी थी। और ये जो है ना वो मछली पकड़ता था, समंदर से हाथ डाल के मछली पकड़ता था और सूरज की तपिश में उसको भूनता था और बादल से जो है ना वो पानी पीता था। तो ये चीजें जो है ना इनकी किताबों के अंदर इन्होंने लिखी हुई है, तो वो बिल्कुल बकवास है ये सब कुछ ना, बिल्कुल इसके अंदर कोई हकीकत नहीं। तो इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने इसके बारे में ये फरमाया। अच्छा, तो लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि कौम अमालका के लोग जो कि कौम आद के बकाया हैं, जिनके हैबतनाक और हैबतनाक कदोकामत का खुद कुरान करीम ने जिक्र फरमाया है, तो उस कौम का डेल डोल और कुव्वत व ताकत जरबुल मिसल थी, यानी जिनकी मिसाल दी जाती थी ऐसी उनके डेल डोल था। वो खजूर के तने की तरह, जब उनके ऊपर अजाब आया था ना तो वो खजूर की तने की तरीके से जो है वो जमीन पर मरे पड़े हुए थे। तो उनमें का एक आदमी कौम बनी इसराइल के 12 आदमियों के गिरफ्तार करके ले जाने पर कादिर हो गया, ठीक है, यानी इतना ताकतवर था कि उधर से उसने रस्सी बांध दी और 12 के 12 उसी के अंदर ना, और उनको फिर खींच करके ले गया होगा किसी तरीके से। बहरहाल बनी इसराइल के 12 सरदार अमालका की कैद से रिहा होकर अपनी कौम के पास मकाम अरिहा पर पहुंचे, जेरिको पे पहुंचे, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इस अजीब व गरीब कौम और उसकी नाकाबिले कयास कुव्वत व शौकत का जिक्र किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्ब पर तो इन सब बातों का जर्रा बराबर भी असर ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने बजरिए वही फतह और कामयाबी की बशारत सुना दी थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम की तो ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी ना। मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो बड़ा मजेदार किस्म का माशाल्लाह उनकी तालीम और तरबियत का कुरान मजीद से हमें पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जब पहली दफा मुसीबत आई, जो उन्होंने तिब्बती को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया था, तो पहली दफा मुसीबत आई कि बंदे ने आके बताया कि वो तो तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं, निकल जाओ यहां से, तो वो भागे, और ऐसा भागे वहां से, यानी ऐसा वहां से निकले मिस्र से कि कौम यानी शुएब अलैहिस्सलाम के इलाके में जाकर के फिर रोके, है ना, फिर वहां पर जो है वो शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों से मुलाकात हुई और उनकी हया और पाकदामनी का सारा तस्करा। तो पहली दफा जो मुसीबत ऐसी आई तो ऐसे निकले ना वहां से। फिर उसके बाद दूसरी दफा मुसीबत कब आई? जब वहां से वापस आ रहे थे मिस्र की तरफ, तो आग लेने के लिए जो उतरे तो पता चला जी वहां पर तो अल्लाह ताला ने कलाम शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने असा को डालो जमीन पर, तो असा को जमीन पर डाला, उधर से जो है वो बन गया अजदहा। उस वक्त भी भागे और ऐसा भागे कि पलट के भी नहीं देख रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला की आवाज आई वापस आ जाओ, उसके ऊपर हाथ रखो, वो वापस तुम्हारा असा बन जाएगा। तो थोड़ा भाग के वापस आ गए, ठीक है, लेकिन उस वक्त भी भागे थे, ठीक है। फिर उसके बाद यानी ट्रेनिंग हो रही है, अब जो है वो हिम्मत बढ़ गई। पहले हिम्मत ऐसी थी कि निकले तो मिस्र से ही निकल गए, और दूसरी दफा जो है वो इतनी हिम्मत आ गई थी कि थोड़ा सा, और फिर तीसरी दफा क्या हुआ कि जब कौम को लेकर के समंदर के किनारे पे पहुंचे हुए थे और उस वक्त जो है वो फिरौन की पूरी फौज आते हुए नजर आई, और उस वक्त जो है ना वो पूरी कौम जो है वो कह रहे हम तो धर लिए गए, हम तो मारे गए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। अच्छा, बल्कि इससे भी पहले एक और भी वाकया हुआ था। एक और वाकया क्या हुआ था? जब जादूगरों से मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ था, उसका भी कुरान मजीद में जिक्र। तो उस वक्त क्या हुआ कि जब जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी तो रस्सियां जो हैं वो सांप नजर आनी शुरू हो गई। अब जो सांप नजर आई तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी सांप ही नजर आ रही थी। तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर खौफ पैदा हुआ, भागे कहीं नहीं, जरा बराबर भी वहां से नहीं टले, लेकिन दिल के अंदर एक फिक्र पैदा हो गई कि अब क्या होगा। देखें, तदरीजन मूसा अलैहिस्सलाम की ट्रेनिंग हो रही है और तदरीजन जो है ना वो मूसा अलैहिस्सलाम बेहतर से बेहतर से बेहतर होए चले जा रहे हैं। ऐसे ही होता है, ठीक है, तालीम और तरबियत जो है वो तदरीजन होती है, इंसान की पर्सनालिटी, इंसान की जो सिफात होती है ना, वो ऐसे इवॉल्व होती हैं, चाहे वो दुनिया का बेहतरीन आदमी क्यों क्यों ना, उसकी भी तालीम और तरबियत होती है। तो हमारी तालीम और तरबियत क्यों नहीं होती भाई, या हम क्यों नहीं करवाना चाहते अपनी तालीम और तरबियत, या क्यों हम उससे जो है वो शर्मिंदा होते हैं, या हम जो है वो उससे भागते हैं, तालीम और तरबियत से ही भागते हैं। भाई मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम और तरबियत हो रही है, नबी अलैहिस्सलाम की तालीम और तरबियत हो रही है, तो हम क्यों एग्जम्प्ट अपने आप को समझते हैं इससे। ठीक है, तो फिर आखिर में जो समंदर के किनारे, तो वहां पर ना भागे ना दिल में खौफ पैदा हुआ, बल्कि क्या जवाब देते हैं, नहीं मेरा अल्लाह मेरे साथ है, ये जवाब देते हैं। ठीक है, तो अब जो है ना उसके भी आगे बात पहुंच गई कि अब जो है वो वहां से क्रॉस करके अब यहाँ वादी तीह के अंदर भी आ गए, और यहां पर जब इस किस्म की मुसीबत सामने आ रही है कि अमालफा के बारे में ये खबरें सुनने को मिल रही हैं, अब दिल में बिल्कुल सुकून है, बिल्कुल सुकून है। ठीक है, और कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, बकौल अकबर इला आबादी, मुझको बेदिल कर दे ऐसा कौन है, याद मुझको अंतुमुल आलाउन है। ठीक है, मुझे तो अल्लाह ताला के वादे याद हैं कि वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलाउन इन कुंतुम मोमिनीन। ठीक है, मुझे तुम जो है वो क्या परेशान करोगे अपनी इन खबरों से। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो उनकी कौवत और शौकत का हाल सुनकर अपनी जगह कोहे इस्तकामत बने हुए इकदाम जिहाद की फिक्र में लगे रहे, मगर खतरा ये हो गया कि बनी इसराइल को अगर हरीफ मुकाबिल की इस बेपनाह ताकत का इल्म हो गया तो ये लोग तो फिसल जाएंगे। इसलिए इन 12 सरदारों को हिदायत फरमाई कि कौमी अमालपा के ये हालात बनी इसराइल को हरगिज ना बताएं, बल्कि राज रखें। मगर हुआ ये कि इनमें से हर एक ने अपने अपने दोस्तों से खुफिया तौर पर इसका तذکرہ कर दिया, सिर्फ दो आदमी जिनमें से एक का नाम यूशा बिन नून और दूसरे का कालिब बिन यूकन्ना था, उन्होंने मूसवी हिदायत पर अमल करते हुए इस राज को किसी पर जाहिर नहीं किया। ठीक है, तो ये जो राजदान होते हैं ना, ये होते हैं असल एतम वाले लोग। ठीक है, और जो जिनका पेट ही हल्का होता है ना, तो उनके ऊपर पर एतमाद नहीं किया जा सकता। तो अपने अंदर ये सिफत पैदा करने की फिक्र करनी चाहिए कि भाई हम भी ऐसे बने कि हम पे ट्रस्ट किया जा सके ना। ठीक है, तो फिर ही फिर आप किसी काबिल बनेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे, वरना फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे अगर आपका पेट ही इतना हल्का है और जबान के हल्के हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज की क्लास में पढ़ लिया, थोड़ा आपसे 7 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए क्लास में, लेकिन शुरू भी थोड़ा सा देर से ही होती है, तो उम्मीद है कि माइंड नहीं करेंगे। किसी को कोई सवाल हो या कोई कॉमेंट हो खत्म करने से पहले तो आप सकते हैं। एक मिनट, कोई सवाल वगैरह तो नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। वाह, अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।